महानुभाव सत्संग प्रेमी माताओं बहनों और भाई, वस्तु का आकर्षण धरती की ओर होता है। आपने देखा होगा वृक्ष में फल जब पक जाता है तो टपक कर धरती पर गिरता है। वस्तु की ओर खींचती है, धरती की आकर्षण शक्ति वस्तुओं को और अपनी ओर खींचती है। इसका अर्थ क्या है कि सभी वस्तुएं भौतिक तत्वों की रची हुई हैं, सजातीयता के कारण धरती का आकर्षण वस्तुओं पर प्रभावकारी होता है। स्वामी जी महाराज ने एक सूत्र लिखा, उसमें उन्होंने यह लिखा है कि वस्तु खिंचती है धरती की ओर और मैं खिंचता है दिव्य चिन्मय रसरूप अनंत तत्व की ओर। बहुत बढ़िया बात है, सोचने समझने के लायक है। वस्तुओं की सजातीयता धरती के साथ है, भौतिक अणु परमाणुओं से बनी हुई वस्तुएं सहज ही धरती की ओर आकर्षित होती हैं और मैं तत्व जो बना है जिसको हम लोग अहम रूपी अणु भी कहते हैं, वह जो है वह भौतिक तत्वों का रचा हुआ नहीं है, वह अलौकिक तत्व से रचा हुआ है। इसलिए उसका सहज आकर्षण उस ओर होता है जो दिव्य चिन्मय रसरूप है, जो अविनाशी है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो रस स्वरूप है, उसकी ओर मैं का आकर्षण होता है, खिंचाव होता है और उसी से इस मैं की सजातीयता है। उसी आकर्षण में स्वाभाविकता है और उसी से मैं का नित्य लोभ होता है। अब अपनी दशा देखें हम लोग, कितनी बड़ी भूल है कि बड़ी बुद्धिमानी के साथ हम लोग यह कहने लग जाते हैं कि क्या बताएं, संसार का सुहावना दुभावना रूप इतना बढ़िया है, इतना सुखद है कि मेरा सहज आकर्षण उसकी ओर हो जाता है। कई साधक भाई और बहन ऐसे हैं जो अपनी तकलीफ बताते हैं तो यह कहते हैं कि सत्संग सुनकर सदग्रंथों को पढ़कर तो सही बात कुछ और मालूम होती है, परंतु संसार का जो सुखद रूप है वो इतना आकर्षक है कि मुझसे छोड़ा नहीं जाता। ये वे कष्ट बताते हैं, अपना मालूम है कि शरीर सदा के लिए नहीं रहेगा, मालूम है कि जो दृश्य आज बहुत ही प्रिय लग रहे हैं आगे रहेंगे नहीं, इस बात को जानते हुए भी संसार की ओर से मन हटता नहीं। यह शिकायत रहती है कि नहीं, ये रहती है, और वैज्ञानिक सत्य तथा दार्शनिक सत्य क्या है, धरती और वस्तु की सजातीयता है, इसलिए वस्तु आकर्षित होती है धरती की ओर, मैं आकर्षित होता है परमात्मा की ओर, नित्य तत्व की ओर, दिव्य चिन्मय रसरूप अस्तित्व की ओर, सच्ची बात तो यह है। और अपने लोगों को भ्रम कितना बड़ा हो गया, भ्रम ये हो गया कि मैं क्या बताऊं, त्यागमय जीवन अच्छा तो लगता है लेकिन संसार का सुख जो है वो छोड़ा ही नहीं जाता, मेरा आकर्षण उसकी ओर है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। तो मनोवैज्ञानिक के अध्ययन के आधार पर यह जाना गया कि मनुष्य जो स्वयं अपने आप में अलौकिक शक्ति भी रखता है, वह यदि अपने ही द्वारा किसी गलत बात को स्वीकार कर ले तो उसकी स्वीकृति के फल स्वरूप उसके जीवन में से वह भ्रम कभी निकलेगा नहीं। अपने ही द्वारा हम लोगों ने मान लिया है कि धरती की ओर संसार की ओर मेरा बड़ा भारी आकर्षण है, तो बात तो ये सच नहीं है। आप बनाए गए हैं अविनाशी तत्व से, आपकी रचना में अलौकिक जीवन की मांग है, आपका सहज आकर्षण उस अविनाशी तत्व की ओर है, लेकिन भ्रमवश जब शरीरों के साथ हम अपने को मिला लेते हैं तो वस्तु के साथ मिला लेने पर वस्तु के समान अपनी वृत्ति बन जाती है, मालूम होता है कि संसार की ओर बड़ा खिंचाव है। अपने संबंध में अपनी धारणा बहुत ही स्पष्ट और सत्य के आधार पर बनानी चाहिए, यह निवेदन करती हूँ। या तो आप इस सत्य को इनकार करिए, जिसको कि स्वामी महाराज ने स्थापित किया अपने अनुभव के आधार पर, वस्तुओं का खिंचाव भक्ति की ओर होता है, मैं का खिंचाव अनंत तत्व की ओर होता है, या तो इसे अस्वीकार करेंगे और अस्वीकार नहीं कर सकते इसे स्वीकार करेंगे तो इसके संबंध में अपने को इतना निर्विकल्प बना लीजिए किसी प्रकार के संदेह की गुंजाइश इसमें नहीं है। इसके आधार पर आप अगर स्वीकार कर लेंगे कि मेरा सहज आकर्षण उस दिव्य चिन्मय रसरूप अस्तित्व की ओर है, इस बात को आप स्वीकार करेंगे तो इधर का लगाव सहज से छूट सकेगा। जिसमें आपका सहज आकर्षण हो नहीं सकता उसके संबंध में हमने मान लिया है, ये सेल्फ कंसेप्ट कहलाता है। अपने संबंध में अपनी धारणा वो बहुत जोरदार काम करती है, तन पर मन पर बुद्धि इंद्रियां कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां सब पर वो अपने संबंध में अपनी धारणा छा जाती है। इसलिए अनुभवी संत ने यह सलाह दी कि अपने संबंध में कोई गलत बात स्वीकार करके मत बैठो। मान लो कि आप घूमने टहलने के लिए निकले हैं और कोई सुंदर सा फूल खिला हुआ देख करके आपका खिंचाव उसकी ओर हुआ, तो कोई बात नहीं, आप इस बात को मानिए कि ठीक है, मैंने देखे हुए दृश्य में सत्य का सुख रूप का स्वीकार किया है, इसलिए यह खिंचाव उस ओर हुआ। परंतु उस पुष्प की सुगंधि का प्रभाव, उस पुष्प के कोमल कोमल स्पर्श का प्रभाव, उसके सुंदर सुंदर रंगों का प्रभाव कहाँ तक जाएगा? केवल स्थूल और सूक्ष्म शरीर की सीमा में यह सब रह जाएगा, उसके आगे नहीं जा सकता। तो फिर अब आप अपने से पूछिए कि इस आकर्षण के आधार पर अगर तुम किसी प्रवृत्ति में प्रवृत्त हो जाओ तो वह क्या सदा के लिए संतोष देने वाली होगी? नहीं होगी। उस पुष्प को तोड़ करके हाथ में ले लीजिए तो जहां से उसको खुराक मिल रही थी उससे इसे विच्छिन्न कर दिया तो कितनी देर आपके हाथ में वो सुंदर रह पाएगा? उसकी सुंदरता की सीमा छोटी हो गई कि बड़ी हो गई? छोटी हो गई। अगर उसको आप अपने श्रृंगार की सामग्री बना ले तो कितनी देर तक उसकी सुंदरता से आप अपना श्रृंगार कर सकेंगे? और थोड़ी देर के लिए। तो अगर संसार के दृश्यों पर दृष्टि जाती है और आपको लगता है कि इस ओर मेरा आकर्षण हो रहा है तो उस पर विचार करिए, उसी जगह बैठ जाइए, उस दृश्य को सामने लेकर के अपने संबंध में सोचिए कि क्या बात है। स्वामी रामकृष्ण के जीवन की सच्ची घटना है, उनको बहुत ही सुगंधित पके हुए लाल सेब खाने का बड़ा शौक था। तो जब अपनी भूल मिटाने का प्रश्न उनके सामने आया, जब नाशवान दृश्य से संबंध तोड़ने का प्रश्न आया, तो वे बाजार से बहुत अच्छे अच्छे पसंद के लायक सेब खरीद करके ले आते और अपने कमरे में स्टडी टेबल पर रख देते। जिन दिनों में वे अंक गणित के अध्यापक थे, मैथमेटिक्स के लेक्चरर थे, उन दिनों की बात है, स्टडी टेबल पर रख देते और उसको देखते रहते। देख रहे हैं, दो दिन बीते, चार दिन बीते, दस दिन बीते, फिर क्या हुआ? लाल लाल रंग उसका उड़ गया। फिर क्या हुआ? छिलका उसका धीरे धीरे सिकुड़ गया। फिर क्या हुआ? उसकी बुद्धि सूख गई, सड़ गई, तो उसमें से दुर्गंधी निकलने लगी। तो सुंदर रंग की जगह पर सुरूप रंग बन गया, सुगंधी की जगह पर दुर्गंधी आने लगी। सत्य के स्वरूप का दर्शन करके और सेब उठा करके फेंक दिया। किसका काम है? यह एक मानव का काम है। मैं अपने लोगों की जो वर्तमान दशा है उस दशा का काफी उस दशा की काफी गुंजाइश रख करके उसके ऊपर उठने का प्रयास करती हूँ, जिसमें कोई भाई कोई बहन यह न कहे कि हाँ उनके तो संस्कार बड़े अच्छे नहीं होंगे, बहानेबाजी बना करके अपने को बचाने लिया जाए। इसलिए मैं नीचे स्तर से कहानी शुरू करती हूँ। तो कोई भाई कई बहन कह सकते हैं कि क्या करें, हमारा तो बड़ा आकर्षण होता है। तो सच्ची बात तो ये नहीं है, सच्ची बात तो यह है कि नाशवान का आकर्षण नाशवान को खींच सकता है, धरती का आकर्षण भौतिक तत्वों को खींच सकता है। मनुष्य जैसे जिसका मैं अलौकिक तत्व से रचा गया, उस अलौकिक तत्व को ये धरती नहीं खींच सकती। ये बात आप मानने को तैयार है कि नहीं? ये मैं गपशप तो नहीं कर रही हूं, ये दार्शनिक सत्य है। भौतिक तत्वों से बनी हुई वस्तुएं धरती के आकर्षण से प्रभावित होती हैं, खिंच करके धरती पर आ जाती है। तो नाशवान का आकर्षण जो है वो नाशवान को ही खींच सकता है। अविनाशी को कैसे पकड़ लेगा, अविनाशी को कैसे खींच लेगा, अविनाशी को कैसे बांध लेगा, ऐसा नहीं हो सकता। और यही कारण है वो अहम का जो विश्लेषण है मानव सेवा संघ की पद्धति में, उसमें स्वामी जी महाराज ने बताया कि यह एक ऐसी विलक्षण रचना है, मनुष्य के मय की रचना जो है वो एक ऐसी विलक्षण रचना है कि मनुष्य जब अपने को नहीं के साथ मिला देता है, नाशवान के साथ मिला देता है, परिवर्तनशील के साथ मिला देता है, तो उसी के सब लक्षण उस पर लागू हो जाते हैं। और वही मनुष्य जब अपने को अविनाशी स्वरूप से मिलाता है, अविनाशी परमात्मा से मिलाता है, तो वो उनकी विभूतियों में समाहित होकर उनके समान हो जाता है। तो एक ही यह मैं है जिसमें जगत के आकर्षण भी मौजूद दिखाई देते और जिसमें सत्य की जिज्ञासा भी, परम प्रेम की प्यास भी रहती है। और दोनों ही बातें आप अपने में देख रहे हैं। तो शरीर को लेकर जब भौतिक दृश्यों की ओर आकर्षित हम होते हैं, तो इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से जानना चाहिए। अगर किसी वस्तु के प्रति खिंचाव हो तो शर्माइए मत, अपने को बुरा मत समझिए, उस आकर्षण को दबा करके, छिपा करके दूसरों के सामने त्यागी वैरागी बने रहने की चेष्टा मत कीजिए। जो चीज आपको खींच रही है उसके पास जाकर के बैठ जाओ, उसको लेकर के घर में एकांत में बैठ जाओ, स्वामी रामकृष्ण की तरह उसके नाशवान और परिवर्तनशील स्वरूप का अच्छी तरह से दर्शन कर लो। संभव है कि असंभव? परिणाम क्या निकलेगा? परिणाम यह निकलेगा कि शरीरों से अपने को मिला लेने के फलस्वरूप यह आकर्षण उत्पन्न हुआ था, उसके परिणाम को विवेक के प्रकाश में देख लेने के बाद वो आकर्षण खत्म हो जाएगा, नहीं रहेगा। तो जो मिथ्या है वो मिट जाता है, जो सत्य है वह रह जाता है। ये प्रारंभिक बात हो गई। अब आगे चले, क्योंकि अपने लोगों को जीवन की पूर्णता तक का प्रोग्राम रखना है और जल्दी जल्दी करना है। शरीर के नाश होने से पहले वो सारी तैयारी पूरी हो ही जानी चाहिए, जिससे कि नाशवान के साथ जो भूल के कारण मेरा लगाव बन गया था वो टूट जाए और जिस अविनाशी स्वरूप से हम लोग रचे गए हैं उसके तीव्र आकर्षण के प्रवाह में हम उससे अभिन्न हो जाए। यहाँ तक का सब रहस्य अपने को अपने सामने रखना है। तो बड़ी ही स्वाभाविक बात है कि सुखद घड़ियों में, भोग प्रवृत्तियों में प्रवृत्त होते रहने पर भी अनेक प्रकार के सुखद साथियों के बीच में रहने पर भी मनुष्य का स्वयं का अपना जो अनुभव है वो ये है कि संसार के संपर्क से मिलने वाला ऊंचा से ऊंचा सुख जो है वह आदमी को भीतर से संतुष्ट नहीं कर पाता। प्रभु के मंगलमय विधान से, जीवन के मंगलमय विधान से हम लोगों ने सुख की घड़ियां देखी है कि नहीं? अनेकों प्रकार के सुख अनेकों भाई बहनों के सामने आए और गए। इस बात की तो पक्की जानकारी है, ये है ना। अब उन बीते हुए सुखों का प्रभाव देख लो, अपने पर क्या प्रभाव हुआ, क्या अनेकों बार सुखद प्रवृत्तियों में प्रवृत्त होकर के भी हम लोग सुख के लालच से मुक्त हो गए, रह गया और क्या हुआ, तो बड़ी भारी आपत्ति में फंस गए। इस आपत्ति में कि अब सुख भोगने की शक्ति घट गई और भोगने की इच्छा रह गई, तो इच्छा रह जाए और परिस्थिति चली जाए, इच्छा रह जाए और भोगने की शक्ति घट जाए, तो कितनी दयनीय दर्दनाक दशा है। कोई भी सम्मानशाली मनुष्य इस दशा को पसंद करता है, नहीं पसंद करता, बहुत बुरा लगता है। इसका अर्थ क्या है, तो सत्संगी भाई बहनों को, सजग व्यक्तियों को बहुत स्पष्ट रूप से अपनी इस दशा का अध्ययन करके यह मान ही लेना चाहिए कि मेरा जो व्यक्तित्व है वह सुख भोग की प्रवृत्ति से संतुष्ट होने वाला नहीं। संतुष्ट क्यों नहीं हुआ भाई, भरा क्यों नहीं, तो इसलिए कि आप स्वयं जिसको मैं पढ़कर हम लोग संबोधित करते हैं, वह अहम रूपी अणु भौतिक तत्वों से बना नहीं है, अलौकिक तत्वों से बना हुआ है, और वह जो बिना देखा बिना जाना दिव्य चिन्मय रसरूप अस्तित्व है, वह अस्तित्व निरंतर हम लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। तो अब आप अपनी बहुत ही सामान्य बुद्धि से शरीरों के साथ तादात्म्य जोड़कर धरती पर हम लोग बैठे हैं, अलौकिक प्यास से तृषित होकर अलौकिक जीवन की चर्चा करने की, ये हम लोगों की वर्तमान दशा है। तो यहीं से आप सोच करके देखिए कि समग्र उत्पत्ति के मूल में जो अनुत्पन्न अविनाशी तत्व है, उसकी विद्यमानता इसी क्षण में हम लोग स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, ये कर रहे हैं। अगर वो न होता तो उत्पत्ति का क्रम चल सकता था, ये नहीं चल सकता था। तो उत्पत्ति विनाश का एक क्रम चल रहा है, बन बन करके तैयार हो करके आकृतियां बनती जा रही हैं, बिगड़ती जा रही हैं, उपजती जा रही हैं, मिटती जा रही हैं। यह जो एक अनवरत क्रिया चल रही है, एक क्रम चल रहा है, तो यह सब किसी न किसी एक उद्गम में से, मौलिक तत्वों में से ही उत्पत्ति सबकी हो रही है और विलय सबका हो रहा है। इस दृष्टि से आप देखें तो आपको इस बात को मानना ही चाहिए कि वह दिव्य चिन्मय रसरूप अस्तित्व जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जिसकी आवश्यकता हम सभी अनुभव कर रहे हैं, वह इसी क्षण में हमारे भीतर बाहर सर्वत्र विद्यमान है। बोलिए है है, भक्त बन करके भगवान कर दो, ज्ञान पंथ के कागज कह करके नित्य तत्व कह दो, निज स्वरूप कह दो, ब्रह्म कह दो, योग पंथ के कागज हो करके परम तत्व कह दो, जे जो भाषा अच्छी लगे सो कहो, लेकिन है वो दिव्य है, चिन्मय है, रसरूप है। ये तीनों बातें हमारे बड़े काम की होती है, इसलिए तीन विशेषण मैं याद रखती हूँ। स्वामी महाराज ने भी इनको खूब प्रयोग भी किया है। तो वह जो दिव्य चिन्मय रसरूप अस्तित्व है, वह समर्थ भी है, सर्वज्ञ भी है, जीवन स्वरूप भी है, प्रेम स्वरूप भी है, और उसी की आकर्षण शक्ति हम सभी भाई बहनों को जाने अनजाने हर रूप में, सुख में दुख में, सब दशा में अपनी ओर खींचती रहती है। परिणाम क्या होता है? तरह तरह के पत्र मेरे पास आते हैं। कुछ साधक ऐसे हैं जिनकी परिस्थिति सुखमय है, तो जब उनको सुख मालूम होता है तो घबरा करके मुझको पत्र लिखते हैं, कहते हैं दीदी सब प्रकार की अनुकूलता की घड़ियां कट रही हैं, बड़ा डर लग रहा है मैं सत्य से दूर न हो जाऊं। अब बताओ मेरा मैं क्या उत्तर दूं? दुख में आदमी घबरा करके लिखता है तो उसको कहते हैं कि भाई धीरज रखो, दुखहारी हरि को याद करो, उनका आश्रय लो, सुख की आशा छोड़ो। तो उसी बातें मेरे पास कहने की है। अब सुख की घड़ी में जब चारों ओर से उनको आराम मिलने लगता है तो घबरा करके नंबर नंबर पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि चारों ओर से सुख बरस रहा है मेरे चारों ओर, दीदी मुझे बड़ा डर लग रहा है कि मैं सत्य से विमुख न हो जाऊं, दूर न हो जाऊं। अगर आप कहेंगे कि मनुष्य का सहज आकर्षण सुख में है तो सुख की घड़ी में उस परमात्मा की उस सत्य की याद किसने दिलाई? जी आज का जो विषय चल रहा है वो ये है कि नाशवान का आकर्षण नाशवान को आकर्षित करता है, अविनाशी का आकर्षण अविनाशी को आकर्षित करता है। तो सुख की घड़ी में चारों ओर सुखद सामग्रियों से भरे हुए होने पर भी उस सत्य की याद उस सत्य के आकर्षण में दिलाई, उसकी ओर मुझको उसी ने खींचा। दुख में तो आदमी सहज से याद करता ही है, दुख की घड़ी में जब शरीर और संसार के साथ मुंह करके अपने को आराम नहीं लगता है, चैन नहीं मिलती है, तो घबरा करके तो उसको याद करते ही है। मैंने ऐसे ऐसे साधकों को देखा है, उनके साथ रही हूँ सभी महाराज के पास। जब मैं दुख की कथाएं सुनाती तो वे सज्जन सुख की कथाएं सुनाते और कहते कि महाराज जी जब से जन्मा तब से ऐसी परिस्थिति में पला हूँ कि मुझको किसी प्रकार की कठिनाई सामने अभी तक तो नहीं मिली थी, अब सत्संग के प्रकाश में मुझे सूझ रहा है कि सुख का भ्रम था। तो उस काल में भी वह जो दिव्य चिन्मय रसरूप अस्तित्व है उसके आकर्षण का प्रभाव आपके आपके व्यक्तित्व को उस ओर खींचता रहता है। आज की इस बैठक में मैं अपने आत्मीय भाई बहनों को यह विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आप इस बात को भूल जाइए कि संसार आपको आकर्षित कर रहा है। आप इस बात को याद रखिए कि वह अनंत परमात्मा आपको आकर्षित कर रहा है, वही आपको अपनी ओर खींच रहा है। भक्त होने के नाते भगवान कह देना और विचारक होने के नाते दिव्य चिन्मय रसरूप अस्तित्व कर देना, जो पसंद आए सो कर देना, लेकिन उसी का आकर्षण हम सब भाई बहनों को उस ओर खींच रहा है। स्वीकार कर रहे हैं? इस स्वीकृति से आपका बड़ा उपकार होगा। क्या उपकार होगा कि बड़ी भारी एक भूल जीवन में हम लोग रख लेते हैं, कहते हैं कि भाई परमार्थ के पथ पर चलना बड़ा कठिन है। तो तुम सोचो कि नाशवान शरीर के साथ जुट करके नाशवान धरती की ओर हमारा क्षणिक आकर्षण है, ये अधिक जोरदार है कि दिव्य चिन्मय रस रूप अस्तित्व का अविनाशी आकर्षण हमको उनकी ओर खींच रहा है, वो ज्यादा जोरदार होगा कि ये ज्यादा जोरदार है? वही ज्यादा जोरदार है ना? मानते नहीं, अपने को भ्रम में डाल देते हैं। क्या बताएं, ये तो छोड़ा ही नहीं जाता। अगर आप स्वीकार कर लेंगे कि मैं दुर्बल हूँ, तो दुर्बलता आपके सिर पर सवार है। आप स्वीकार कर लेंगे कि मैं सुख भोग का लालची हूँ, तो वो लालच आपके सिर पर सवार है। आप स्वीकार कर लेंगे कि मैं अविनाशी तत्व का बना हुआ हूँ, मुझ में अविनाशी की मांग है और मेरा जो यह स्वयं का अस्तित्व है, यह अस्तित्व उस दिव्य चिन्मय रस रूप के अस्तित्व से आकर्षित है, तो ये तो स्वभाव से ही उस ओर जाने वाला है, यह तो स्वभाव से ही उस ओर खींच रहा है। रास्ते में देर क्यों लग रही है? देर इसलिए लग रही है कि क्षण भर के सुखद आभास के लालच में अनंत आनंद पर पर्दा डालकर हम बैठ जाते हैं। इस भूल को मिटा दीजिए, अपने द्वारा अपने को सुख भोग का लालची स्वीकार मत कीजिए। प्रातःकाल सोकर उठे तो याद कर लिए एक बार, भाई संसार में जो आकर्षण शक्ति है वो वस्तुओं को अपनी ओर खींच सकती है, मुझको तो वह अनंत अविनाशी अस्तित्व आकर्षित कर रहा है। अब हम इसकी ओर नहीं देखेंगे, हम तो इसी ओर आगे बढ़ेंगे। तो आपने देखा होगा कि दुर्बल से दुर्बल साधक, असमर्थ से असमर्थ साधक, जो पढ़ा लिखा भी नहीं है और जिसमें शारीरिक बल भी नहीं है और जिसका कोई संगी साथी सहायक भी नहीं है, ऐसा साधक जो इन सारी बातों में अपने को असमर्थ मानता हो, फिर भी उसके भीतर जो अलौकिक मान विद्यमान है उसके आधार पर वो निर्बलताओं से मुक्त होना चाहता है तो हो जाता है। उसकी आवश्यकता अनुभव करता है तो आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। वह निर्विकार निर्मम निष्काम होना चाहता है तो ये सारी बातें उसके भीतर आ जाती हैं। वो प्रभु के शरणागत होकर उनकी कृपा का आश्रय लेकर उनके प्रेम का पात्र बनना चाहता है तो बन जाता है, ऐसा होता है। एक बार एक साधक स्वामी जी महाराज को मिले, उनके दोनों हाथ यहाँ से कटे हुए थे, दोनों पांव यहाँ से कटे हुए थे, बड़ी प्रसन्न मुद्रा थी। स्वामी जी महाराज उन दिनों में अकेले संबल नदी के किनारे पहाड़ की गुफा में रहा करते थे, तो कुछ लोग उन साधक को पीठ पर लाद करके ऊपर गुफा पर चढ़ा के ले गए। पत्थर का पहाड़ वो नहीं है, संबल नदी के किनारे मिट्टी का पहाड़, तो सीढ़ी उड़ी कुछ नहीं बन सकती, मिट्टी मिट्टी काट के संबल को सहारा ले लेते हैं और वो रोज धरती रहती है, टूटती रहती है, ऊपर चढ़ना बड़ा मुश्किल। लेकिन कुछ लोग ले गए उनको पीठ पर लाद करके स्वामी जी के पास, बड़ी प्रसन्न मुद्रा ले जाकर के वहां उनको डाल दिया। महाराज जी से बातचीत होने लगी, बड़े आनंदित थे वो सज्जन, दोनों हाथ यहाँ से कटे हुए, दोनों पांव कटे हुए, संग में कोई साथी नहीं और पैसा रखने का भी कोई प्रश्न ही नहीं, हाथ संगी है तो रखेंगे कैसे, कुछ नहीं था उनके पास और बड़े आनंद में मस्त थे। वो स्वामी जी महाराज ने पूछा कि भैया तुम आए कैसे? हंसके कहते हैं कि आपके पास कैसे पहुंच गया, जैसे लोगों ने वहां से उठा करके यहाँ पहुंच दिया, ऐसे ही लोग उठा के एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं, ऐसा क्यों करते हो, यात्रा क्यों कर रहे हो? तो कहने लगे मेरे गुरु महाराज ने कहा था चारों धाम घूमा लो, तो और सब यात्रा हो गई है, बद्री काश्रम बाकी है, इसलिए मैं ट्रेन से जा रहा था, तो आपके भक्त लोगों ने कहा मुझसे कि चलो एक भगवत अनुरागी संत से मिला दे, तो महाराज आपका दर्शन करने आ गया और खूब आनंद में आनंदित है, कोई दुख नहीं, अभाव नहीं, पराधीनता नहीं, शारीरिक असमर्थता का कोई प्रभाव नहीं होता है, हो सकता है। तो मैं केवल इतनी सी बात वक्र पुष्प के रूप में श्रोता भाई बहनों की सेवा में अर्पित करना चाहती हूँ कि कभी इस बात को भूल करके भी मत स्वीकार करो कि संसार का आकर्षण तुम्हें पकड़ सकता है। अगर अब तक यह आकर्षण तुम्हारे सिर पर चढ़ा रहा तो केवल इस भूल से कि तुमने उसको अपने पर चढ़ने दिया, नहीं तो नहीं। और अनंत जीवन का जो मूल स्रोत है, अनंत माधुर्य का बहुत ही मीठा आकर्षण जिसमें है, उस आकर्षण से आकर्षित हो करके भी थोड़ी थोड़ी देर के लिए उधर से मुंह फेर फिर कर संसार की ओर भटकते फिर रहे हो, तो यह भी इसी कारण से कि हमने मान लिया कि भगवत प्राप्ति बड़ी दूर की बात है, कि जीवन मुक्ति बड़ी दूर की बात है, कि परम शांति बड़ी दूर की बात है, कि नित्य योग बड़ा कठिन है। कठिन कैसे हो सकता है? जिससे तुम्हारी सजातीयता, जिससे बिछुड़ जाने के कारण से अनेकों बार शरीर धारण करके देह जनित सुख दुख का भोग करते हुए आज तक पल भर के लिए कहीं विश्राम नहीं मिला, उससे मिलना कठिन कैसे हो जाएगा? जिससे तुम्हारी सजातीयता है उससे अभिन्न होना कठिन कैसे हो जाएगा? जो अपने अनंत माधुर्य से हमारा, आपका, सबका, प्राणी मात्र का भरण पोषण पालन संभाल कर रहा है, उसके पास पहुंचना दूर कैसे हो जाएगा? जो नित्य निरंतर अपने ही में विद्यमान है उससे मिलना कठिन कैसे हो जाएगा? या तो ये कहीं की ये सब बातें आप नहीं मानते हैं, हिम्मत है करने की? नहीं कर सकते। तो ऐसी एक दृष्टि अपने में बढ़ा ली, बाहर जो खुशहाल मालूम होता है वो भूल का परिणाम है, उसने आज तक संतोष नहीं दिया और उसी की ओर दौड़ दौड़ करके अपना जो जीवन का मूल सत्य है उससे हम विमुख होकर अनेक प्रकार से दुख हो गए। उनकी ओर से आकर्षण है, उनकी ओर से याद दिलाया जाता है, और नहीं तो संत के पास पहुंच करके मुझे जब इस बात का पता चला तो कहीं कहीं किसी किसी लेख में लिखा भी है मैंने, और सत्संगी भाई बहनों के बीच में तो बहुत बार निवेदन किया कि मैं क्या बताऊं, मैं तो समझती थी कि केवल जीवन मुक्ति और भगवत भक्ति के लिए ही साधक होना जरूरी है, ऐसा मान करके मैं उनके पास बैठी थी, लेकिन उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का थोड़ा सा प्रयास किया मैंने, पूरा पूरा अनिष्ट काम हो गया, लेकिन थोड़ा सा जो प्रयास किया मैंने साधक के जीवन को स्वीकार किया कि मैं साधक हूँ, और थोड़ा प्रयास किया तो उसी में मैंने देखा, मुझे अपने लिए बहुत ही स्पष्ट अनुभव हुआ कि कहाँ तो सुख दुख की लहरियों में डूबते डूबने उतराने वाला एक एक व्यक्तित्व और कहाँ उस अनंत परमात्मा की अनंत कृपालुता। तो मैं कहने लग गई, लिखने लग गई, मैं ये कहने लग गई कि महाराज जी, मैं अपनी दुर्दशा से मुक्त होने के लिए जितनी जितनी व्याकुलता अपने में नहीं पाती हूँ उससे अधिक तत्परता उस परम कृपालु में है, हमको सुधार लेते हैं। ये मैंने अनुभव किया, जड़ता के साथ अपने को जड़ बनाकर हारमान के बने हुए शरीर के साथ अपने को मिलाकर अनेक प्रकार के दुख अनेक जन्मों से भोगते हुए भी अपने उद्धार के लिए उतने व्याकुल हम नहीं हैं जितना हमारे उद्धार का चाल उस परम कृपालु में है। ऐसा मैंने अनुभव किया और उसके आधार पर मैंने पाया कि केवल जीवन मुक्ति और भगवत भक्ति का मार्ग खिलाओ ऐसा नहीं, संसार में रहना भी बड़ा ही सहज हो गया। बहुत सी बातों में मैंने ये भी कहा कि भाग्य की रेखाएं बदल गईं, ये सब गपशप नहीं, मन बहलाव की बात नहीं है, आप लोगों के सामने जुदी जुदी चर्चा करने का प्रश्न नहीं है। ये दुख सुख के उलझन में पड़े हुए साधक को जब आराम मिलता है, विश्राम मिलता है, प्रकाश दिखाई देता है, चलने का मार्ग मिलता है, अपने से अधिक अपना हितैषी जब जब सब प्रकार से सहारा देने लगता है, तब इस प्रकार की बातें सुनता है भी अपने हितैषी से सजने लगती है। ऐसा अनुभव आप अनेकों भाई बहनों का होगा और ऐसा आप पसंद करेंगे तो जिनको अब तक नहीं हुआ होगा उनको भी आगे होने लगेगा। अब समय पूरा हो गया, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएंगे। जो अपने में भगवान की स्थापना करता है वह जिज्ञासु है। जो अपने को भगवान के आगे समर्पित कर देता है वह भक्त है। ज्ञान में अपने को मिटाना है और भक्ति में अपने को समर्पित करना है। ज्ञान में जीव ब्रह्म के स्तर पर जाता है, भक्ति में ब्रह्म जीव के स्तर पर आता है। भक्त भगवान को मानता है और प्रेम भगवान ही करते हैं। प्रेम का अर्थ कुछ लेना नहीं, आनंद को आनंद देना है। जिज्ञासु अपने में लीन रहता है। जब हम स्मरण करते हैं तो हम देह से तद्रूप हो जाते हैं। जब हम में स्मृति जगती है तब इंद्रियां मन बुद्धि आदि सब उस अविनाशी से तद्रूप हो जाते हैं। देह से तद्रूप होकर करने वाली क्रिया से भगवत मिलन नहीं होता, अपने आप स्वीकार की हुई आत्मीयता से प्रभु मिलन होता है। गुण और दोष के रहते हुए प्रेम नहीं होता, वे स्वयं प्रेम करते हैं तब प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। जिन्हें ख्याति सम्मान चाहिए उन्हें उदारता देकर वे समस्त जगत का पूज्य बना देते हैं। जिन्हें मुक्ति चाहिए उन्हें वे ज्ञान देकर मुक्त कर देते हैं। जिन्हें शांति मुक्ति आदि सब खारी लगे वे ही प्रेम पाते हैं। यहाँ तक कि प्रेमी कौन है और प्रेमास्पद कौन है यह भी पता नहीं चलता। प्रेमी और प्रेमास्पद का नित्य विहार सदा रूप है।